बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अंदाज़ जहां के साथ मोहम्मद मेहती शराफत हाजिर है। हमारा ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@sahartv.ir और हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahartv.ir। और अंदाज़ जहां में आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है नावाबस्ता तहरीक का तेहरान सरबराही इजलास। तो लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइए अंदाज़ जहां। या नाजरीन, तेहरान में नावाबस्ता तहरीक का 16वां सरबराही इजलास जुमेरात की सुबह कायदे इंकलाब इस्लामी आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामनेई के खिताब से शुरू हुआ और जुमे की रात एक बयान जारी करके अपने अख्तिताम को पहुंचा। 11 शिकों पर मुश्तमिल इस बयान में मसले फलस्तीन के मुनसिफाना हल, इस सरजमीन से गासिबाना कब्जे के खात्मे, पुरामन मकासद के लिए एटमी तवानाई से इस्तेफादे के तमाम मुल्कों के मुसलमा हक और पायदार अमन के क्याम समेत मुख्तलिफ मसाइल का अहाता किया गया है और आलमी निज़ाम चलाने में दुनिया के तमाम मुल्कों की मुशारकत पर जोर दिया गया है। इसके लिए अक्वामे मुत्तहिदा के ढांचे में बुनियादी इस्लाहात और दुनिया से जुल्म, जारहियत, तसल्लुत पसंदी और इम्तियाज के खात्मे पर जोर दिया गया है। इख्तितामी इजलास के खिताब में सदर ममलकत डॉक्टर महमूद अहमदी नजाद ने भी इस बात पर जोर दिया है कि तमाम अराकीन आलमी निज़ाम में इस्लाह चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि तहरीक के तमाम अराकीन इंसानी करामत, इंसानों के हुकूक, खुदाई और इंसानी अकदार, अदल व इंसाफ, पाकीजगी और दोस्ती के तहफ्फुज पर जोर देते हैं। सदर ममलकत ने कहा है कि तहरीक के तमाम अराकीन दोस्ती और बरादरी के फरोग और अखलाकी उसूलों की पाबंदी, नीज खुदपरस्ती, खुदसरी, तोसी पसंदी और तसल्लुत पसंदी के मुकाबले की जरूरत पर ताकीद करते हैं। सदर ममलकत ने बताया कि तमाम अराकीन तहरीक की पोजीशन मजबूत किए जाने, नीज अराकीन की तवानाई में इजाफे और बैनुल अक़वामी उमूर और मामलात में तमाम मुल्कों की मसावी मुशारकत के असबाब फराहम किए जाने के ख्वाहिशमंद हैं। नाजरीन, चलते हैं इस्लामाबाद स्टूडियो जहां बर्रे सगीर के मुमताज दानिश्वर और पाकिस्तान के सीनियर तजिया निगार उमर रियाज अब्बासी साहब मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू के उनसे ख्यालात मालूम करते हैं नावाबस्ता तहरीक के बारे में और उनकी गुफ्तगू से आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं। अब्बासी साहब, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
अब्बासी साहब, तेहरान में नावाबस्ता तहरीक का 16वां सरबराही इजलास जो जुमेरात को कायदे इंकलाब इस्लामी के खिताब से शुरू हुआ था, जुमे की रात सदर ममलकत के खिताब के बाद एक बयान जारी करके अपने इख्तिताम को पहुंचा है। इस इजलास के बारे में आपका तज़िया क्या है?
देखिए, सबसे पहले तो मैं दिल की अमीक गहराइयों से ईरान को और उनकी लीडरशिप को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्हें 2012 से लेकर 2015 तक नॉन अलाइन मूवमेंट यानी नो वाबस्ता तहरीक, ना वाबस्ता तहरीक, उसकी जो चेयर है वो उन्हें दी गई है और डॉक्टर महमूद अहमदी नयाद इसको हेड करेंगे। ये बड़ी खुशाइन बात है। जहाँ तक आपने सवाल किया कि इस सरबराही इजलास के बारे में, तो 26 अगस्त से 31 अगस्त ये गालिबन 4 से 5 दिन तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट वजह है कि 26 को तो वफूद पहुँचना शुरू हुए वहाँ पर, जो 30 और 31 यानी जुमेरात और जुमे का दिन है, और जुमे का दिन वैसे भी बाबरकत दिन है, तो जुमे की जो रात थी, जुमेरात की रात और जुमे का दिन, ये दो स्पीचेस बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामिनई की और एक जो एंडिंग जो एड्रेस था डॉक्टर महमूद अहमदी नयात का, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। मैं एक अर्ज करना चाहूँगा यहाँ पे कि जो आयतुल्ला अली खामिनई है उनका जो खिताब है, मैंने पूरा थ्रू इंटरनेट वो पूरा खिताब मैंने वीडियो देखा सुना, एक चीज़ जो बड़ी खुशाइन मुझे वहाँ पर लगी सबसे बेहतर कि पहली दफ़ा किसी इस्लामी मुल्क के इतने बड़े लीडर ने मतलब मज़हब की तकसीम की बात नहीं की, लिसानियत की बात नहीं की, कल्चर की बात नहीं की बल्कि मुश्तरका मफादात की बात की है, कॉमन इंटरेस्ट की बात की है। और फिर उन्होंने जो एक इम्पॉर्टेंट जिस नुक्ते की तरफ इशारा दिया कि जो मगलूब कौमें हैं, जो गरीब कौमें हैं, उनको तसल्लुत से निकालना और बराबर ला खड़ा करना उन कॉलोनियल पावर्स के, वो पांच कॉलोनियल पावर्स जिनमें अमेरिका, बरतानिया, रशिया, चाइना, फ्रांस प्लस वन जर्मनी, 5+1 जिन्हें हम कहते हैं, इनके बराबर ला खड़ा करना, और इन्हें भी वही आजादी हासिल है जो उन पांच कौमों को हासिल है, चाहे वो जौहरी ईंधन के हवाले से हो, चाहे वो मईशत के हवाले से हो, इंसानी आजादी के हवाले से हो, एहतरामी आदमियत के हवाले से हो, अमन के हवाले से हो। तो मेरे ख्याल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा हुज्जतुल विदा पढ़ा जाए, तो मैं कल उसकी क्लॉजेस देख रहा था और मैं इसमें बिल्कुल मुबालगा आमेजी नहीं करूंगा कि खुतबा हुज्जतुल विदा की प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशन, उसकी अमली तशरी और तफसीर आयतुल्ला अली खामिनई ने वहां पे बयान की है। अगर खुतबा हुज्जतुल विदा में ह्यूमन राइट्स के डिक्लेरेशन को देखें, वेमन राइट्स को देखें और प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज को देखें, पॉवर्टी एलिविएशन, गुर्बत के खात्मे की बात वहां पे है, इंसानी आजादी की, एहतराम आदमियत की बात है, इक्वालिटी की है, वो सारी चीजें आयतुल्ला अली खामिनई ने अपने खिताब में कही हैं। तो गोया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पूरी दुनिया को पीस का चार्टर दिया था और एहतराम आदमियत का चार्टर दिया था, आज ईरान उस खुतबा हुज्जतुल विदा के चार्टर को नैम कॉन्फ्रेंस का मेन एजेंडा बनाने में कामयाब हुआ है। और यह बहुत बड़ी कामयाबी है कि नैम के अंदर नॉन मुस्लिम कंट्रीज भी हैं, गैर मुस्लिम ममालिक, वहां पर आयतुल्ला अली खामिनई का इंसानी आजादी की बात करना और इस्लाम के पैराए में बात करना, पीस की बात करना, ये न सिर्फ ईरान के हक में बेहतर है बल्कि पूरे आलम इस्लाम के लिए एक लीडिंग रोल उन्होंने प्ले किया है कि वी बीइंग अ मुस्लिम, मुस्लिम कंट्रीज, हम एहतराम की बात करते हैं, हम कॉमन इंटरेस्ट की बात करते हैं, पीस एंड को एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, और खिते के अंदर जितने ममालिक हैं, ये 120 ममालिक जो इसके रुकन ममालिक हैं, वहां पे गुर्बत खत्म होनी चाहिए, इंसानी आजादियां होनी चाहिए, बारूद नहीं होना चाहिए, और वो लोग तसल्लुत से निकलें और बराबर खड़े हों बाकी बड़े मुल्कों की मईशत के। एक तो इसकी कामयाबी का राज ये है। दूसरा मेन पॉइंट एजेंडा, वैसे तो इसके 700 जो निकात थे वो तैयार हुए थे, लेकिन आखिर में एलामिया जो डिक्लेरेशन था जो समिट का 2012 की, वो 11 पॉइंट्स थे, और उन 11 पॉइंट्स के अंदर फैलस्टाइन को एड्रेस करना ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इस एतवार से भी कामयाबी है कि हिंदुस्तान भी फलस्तीन के इशू का हामी है, पाकिस्तान भी फलस्तीनियों के राइट्स की बात करता है, टर्की भी बात करता है, ईरान भी बात करता है, दीगर ममालिक भी बात करते हैं। तो गोया मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, सब ने तस्लीम कर दिया है कि फलस्तीनी जो मुसलमान हैं उन्हें हक के खुद इरादियत मिलना चाहिए और बुनियादी इंसानी हकूक उन्हें हासिल हैं, और सब ने इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयों और बर्बरियत जो है उसको डिसऑन किया है, उसकी मजम्मत की है। यह मुसलमानों के लिए दूसरी बड़ी कामयाबी है। नंबर थ्री जो बात की गई है कि ये जो इस्तेमारी ताकतें हैं अमेरिका और उसके इत्तेहादी, इनका कोई बंदा अगर मर जाए तो ये पूरी दुनिया पे, अफगानिस्तान पे, इराक पे, ईरान पे, शाम पे, ट्यूनिजिया पे, पाकिस्तान पे, हर जगह चढ़ दौड़ते हैं। लेकिन जब कोई मुसलमान मारा जाए बर्मा के अंदर, कोई मुसलमान फलस्तीन में मारा जाए, कोई मुसलमान इराक में मारा जाए, वहां पे अटैक्स हो रहे हों, तो ये लोग इनके कानों तक जू नहीं रेंगती। तो इस मसले पे भी बात की गई है कि जहां पे जुल्म हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है, इनके इस जुल्म को रोका जाए। नंबर थ्री, तीसरी जो बड़ी कामयाबी है वो आयतुल्ला अली खामिनई का इस खिताब में भरपूर अंदाज में कहना, इसके बाद मेरे ख्याल में कोई गुंजाइश नहीं रहती कि ईरान अपनी जोहरी तवानाई के हुसूल के उस इरादे पर कायम है, लेकिन एटमी तवानाई के हुसूल का ईरान किसी भी सूरत में खाहां नहीं रहा, और ईरान चाहता है कि एटमी अदम फैलाव के हवाले से सबसे पहले बड़ी ताकतों को जो है उनके तख़फीफ़ी असलाह की बात की जाए और मिडल ईस्ट में इसराइल से असलाह जो है वो कम करवाया जाए, तब जाके जब सबके पास बराबर असलहे की मकदार होगी, एटमी दौर नहीं फैलेगी, तब जाके दुनिया में अमन कायम होगा। तो मेरे ख्याल में ये एक ऐसा फॉर्मूला है कि इस कॉन्फ्रेंस की बाजगश्त मशरिक वुस्ता के ईवानों को भी हिलाएगी, इस कॉन्फ्रेंस की बाजगश्त और इसके असरात एशिया पर भी मुरतब होंगे, वस्ती एशियाई रियासतों पर भी मुरतब होंगे और अफ्रीका और शुमाली अफ्रीका तक जाएंगे। तो इस एतबार से ईरान का इस कॉन्फ्रेंस में लीडिंग रोल प्ले करना और फ्रंट लाइन स्टेट के तौर पर सामने आना, एज ए लीडरशिप सामने आना, यह बहुत खुशाइंद है। और अगले 3 साल के लिए जो इसे चुना गया है ईरान को, उसमें मैं एक बहुत बड़ी खूबी आपको बता दूं कि ईरान वाहिद मुल्क है दुनिया का, सिर्फ इस्लामी नहीं, दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें सबसे ज्यादा यकजहती पाई जाती है, यूनिटी। वहां का अगर कोई लीडर एक बात करेगा तो उसके पीछे पूरी कौम खड़ी होगी। तो मुल्क जो है वो आवाम की राय पे और अपने लीडर्स जो हैं उनके वीएन पे चलते हैं। तो ईरानी लीडरशिप का वीएन चूंकि इस वक्त बिल्कुल वन पॉइंट एजेंडा है, पीस एंड को एग्जिस्टेंस, जियो और जीने दो, पुरमन तरीके से दूसरों को भी रहने का हक दो। तो ईरानियन के अंदर इस वक्त यूनिटी है और वो यूनिटी उनके मैसेज के अंदर भी है, लीडरशिप के अंदर भी है। तो लिहाजा नावाबस्ता तहरीक का ईरान को उसकी जिम्मेदारी देना ये इन रियासतों के लिए भी बेहतर है, फलस्तीन कॉज के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी और दीगर कंट्रीज के लिए, और ये बिलखसूस आलम इस्लाम के लिए एक एजाज है। तो एक अगली जो बात है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जैसे ईरान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि ये उम्मीद की किरण है कि ईरान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात बेहतर होंगे तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान भी आपस में करीब आएंगे, क्योंकि ईरान पाकिस्तान का ब्रदर मुल्क है, जो बरादराना इस्लामी मुल्क है, हमारे देरीना पड़ोसी मुल्क की हैसियत से ताल्लुकात है, हमारा कल्चर एक है, रिलीजन एक है, हमारी सकाफत एक है। तो इस एतबार से मेरे ख्याल में हिंदुस्तान भी चूंकि 7 सितंबर को उसके वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का विजिट कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान का ईरान से तेल खरीदना, अमेरिका के दबाव में न आना और पाकिस्तान और ईरान का गैस पाइपलाइन का मुआहदा और ईरान पाकिस्तान और इंडिया ये जॉइंट वेंचर अगर बन गया और इसमें अफगानिस्तान भी शामिल हो जाता है, टर्की भी हो जाता है, तो मेरे ख्याल में अमेरिका की थानेदारी के दिन गिने जा चुके हैं। लिहाजा ये इजलास मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा डिक्लेरेशन है, बहुत बड़ी कामयाबी है जिसका क्रेडिट पूरे आलम इस्लाम को, पूरे 120 ममालिक को, नावाबस्ता तहरीक के और बिलउमूम ईरानियन लीडरशिप को जाता है।
बहुत बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब। और नाज़रीन टेलीफोन लाइन के जरिए हमारा राबता इस वक्त बरकरार हुआ है हिंदुस्तान के एक मुमताज और सीनियर सियासतदान अली अनवर अंसारी साहब से, जो राज्यसभा के मेंबर हैं और जनता दल यू से इनका ताल्लुक है। अंसारी साहब अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
अंसारी साहब, नावाबस्ता तहरीक के तेहरान इजलास के बारे में हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि आम तौर पर हिंदुस्तान के सियासतदान इस इजलास को किस नजर से देखते हैं और खुद आपकी नजर में इस इजलास की अहमियत क्या है?
नहीं, अभी पहले के जो मुकर्रर थे उनकी राय से हम एग्री करते हैं कि ये एक अच्छा स्टेप लिया है और अमेरिका के दबाव में नहीं आया है इंडिया, और एक मुआहदा किया है इसे तेल खरीदने का, तो इससे हम समझते हैं कि ठीक ही कहा कि ईरान के जरिए वो पाकिस्तान पर भी असर पड़ेगा और हिंदुस्तान चाहता है कि पाकिस्तान से उसके ताल्लुकात अच्छे हैं, अच्छे रहने चाहिए, दोनों मुल्कों के ये फायदे की बात है और पूरे समझिए कि एशिया के लिए भी ये अच्छी बात होगी।
जी जनाब, ये खुद नावाबस्ता तहरीक के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये तहरीक आलमी और इलाकाई तनाज़ात के हल और मसावात कायम करने में, जुल्म व जारहियत का खात्मा करने में, तसल्लुत पसंदी और तौसी पसंदी का खात्मा करने में कितनी मुअस्सिर वाक़े हो सकती है?
नहीं, बिल्कुल सही है, मसावात तो और भाईचारा जरूरी है, पीसफुल को एग्जिस्टेंस वो इंडिया की शुरू से ये रही है, इसका वसूल ये रहा है और जब से मुल्क आजाद हुआ तब से जियो और जीने दो, जैसा कि आपने कहा, तो ये तो यही वसूल रहा है और हम इसमें जरूरी है कि पड़ोसी जो मुल्क हैं उनसे ताल्लुकात अच्छे रहें और जंग वो लड़ाई वगैरह की बात नहीं हो, तो ये बेहतर है, सबके सबके फायदे में है और सभी सभी आवाम के फायदे में है और इससे तरक्की होगी सभी मुल्कों की।
जी अंसारी साहब, एक सवाल हम और करना चाहेंगे कि ये जो नावाबस्ता तहरीक का तेहरान इजलास हुआ है इसमें सबसे बड़ा वफ्द हिंदुस्तान का था, 300 रुकनी वफ्द वजीर आजम मनमोहन सिंह की क़यादत में, ये जो इजलास था तेहरान का इसमें हिंदुस्तान का वफ्द सबसे बड़ा था, वजीर आजम मनमोहन सिंह की क्यादत में तकरीबन 300 रुकनी वफ्द तेहरान आया था और मनमोहन सिंह के जो मुजाकिरात हुए हैं डॉक्टर महमूद अहमदी नजाद साहब से और इनकी मुलाकात हुई है قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ خامنئی سے اس میں جو گفتگو ہوئی ہے اس میں باہمی روابط کو فروغ دینے کی بات کی گئی ہے اور عالمی اور علاقائی مسائل میں مشترکہ موقف اختیار کرنے پر زور دیا گیا ہے. اور ریاضی صاحب نے اپنی گفتگو میں جیسا کہا ہے کہ ایسا یہ لگتا ہے کہ ہندوستان اور ایران مزید قریب آ رہے ہیں. ان دونوں ملکوں کے مزید قریب آنے سے خطے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟
نہیں بالکل میں ٹھیک ہے, نزدیک آنا چاہیے اور پہلے سے بھی نزدیک رہے ہیں اور اس سے یہ لگتا ہے کہ لیڈرشپ دونوں ملکوں کا یہ میچیور ہوا ہے حال کے دنوں میں, اور جو دنیا میں جو حالات ہیں اور جو ایک دوسرے سے لڑانے کی امریکہ کوشش کرتے رہتا ہے اپنا ہتھیار بکوانے کے لیے اپنی داداگیری چلانے کے لیے, اس کو قاعدے سے یہ اس کا یہ ضروری تھا اس کا اس روپ میں جواب دینا.
جی بہت بہت شکریہ انصاری صاحب. اور ناظرین جی نوابستہ تحریک کی اہمیت کے بارے میں لندن میں مقیم برے صغیر کے ممتاز دانشور ڈاکٹر عنایت اللہ اندرابی کہتے ہیں
یہ جو نوابستہ ممالک کی سمٹ کانفرنس ہو رہی ہے تہران میں, اس کی کئی لحاظ سے اہمیت ہے. ایک تو یہ بات ہے کہ دنیا کا بدلتا ہوا مناقشہ اور سناریو جو ہے وہ بھی اس کی اہمیت کا ایک باعث ہے. ہمیں یاد ہوگا کہ نوابستہ تحریک کی بنیاد تو 60s میں ڈالی گئی, اور اس وقت ڈالی گئی جب دنیا میں امریکہ اور سوویت یونین کی ایک جس کو جنرلی کولڈ وار کہا جاتا ہے ایک سرد جنگ ان دو کے درمیان جاری تھی, اور اس وقت یہ کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ ہمیں ان دو سے الگ ہو کر اپنی ایک انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی اور اپنا ایک انڈیپینڈنٹ راستہ لینا چاہیے. تو اس وقت یہ نوابستہ تحریک کی بنیاد پڑی تھی. اب یہ الگ بحث ہے کہ یہ ان تمام سالوں میں یہ صحیح طور پر نوابستہ رہی یا نہ رہی, بلکہ یہ بھی دیکھا گیا کہ وہ سوویت یونین اور امریکہ کی جو چپکلش تھی اس میں کئی بار اس کو سوویت سائڈ پہ دیکھا گیا اور اس کی نوابستگی ذرا مشکوک کئی بار مشکوک بن گئی. لیکن بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے. پوائنٹ یہ ہے, کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ اصل میں یہ اس کا ایک سپرٹ تھا کہ یہ جو دو بڑے بلاکس کی جو آپس میں چپکلش ہے اس سے الگ ہو کر اپنا ایک راستہ اختیار کیا جائے. تو اب یہ جو اس وقت تہران میں یہ کانفرنس ہو رہی ہے اس کی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کی اہمیت کئی اعتبار سے ہے, اور ایک اس کی اہمیت یہ بھی ہے کہ یہ تہران میں ہو رہی ہے, یہ اس وقت ایران میں ہو رہی ہے جبکہ ایران کو تنہا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں, جبکہ امریکہ ایک باضابطہ ایجنڈا پر عمل کرتے ہوئے, اور آج کا ایجنڈا نہیں بلکہ تب سے جب سے ایران کا اسلامی انقلاب برپا ہوا تب سے جو امریکہ کی ایک کنسرٹڈ یہ کوشش ہے, اور جو حضرات جو امریکہ کی فورن پالیسی کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہ امریکہ کی فورن پالیسی میں ایک سرفہرست آئٹم رہا ہے کہ ایران کو کنٹین کرنا, اس کو آئسولیٹ کرنا, اور الٹیمیٹلی ایران کے انقلاب کو ڈیفیٹ کرنا. اصل مسئلہ یہ ہے, اسلامی انقلاب کو ڈیفیٹ کرنا. تو اس پہ امریکہ بالکل عمل پیرا ہے پچھلے 30 سال سے, اور اس کا ایک اہم کمپوننٹ یہ ہے کہ ایران کو آئسولیٹ کیا جائے. تو اس میں اس نے ایک اس کا جو خاص مرسنری ہے آل سعود سے اس نے یہ خدمت لی ہے کہ وہ اس طرح سے کام کریں کہ وہ اس میں ایک شیعہ سنی ڈائمنشن لائے, وہ ایک شیعہ سنی ڈائمنشن لا کر ایران کو بحثیت ایک شیعہ ملک آئسولیٹ کرے. یعنی یہ ایک آئسولیشن کی اسٹریٹجی ہے, تنہا کرنے کی ایک امریکی اسٹریٹجی ہے جس میں آل سعود کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں کہ وہ شیعہ سنی کے ڈائمنشن کے طور پر اس کو الگ کرے. تو آل سعود جو ہے یہ بالکل وفاداری کے ساتھ بالکل امریکی پٹھو بن کر ये काम कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं, और इस पर अरबों डॉलर जो है वो सर्व किया जा रहा है मुसलमानों में नफरतें फैलाने का और फिरकावारियत को हवा देने का। तो ये जो तरह करने की स्ट्रेटजी है, ये अब इस वक्त एक नावाबस्ता तहरीक का समिट वहाँ पे वकू पजीर होना, वहाँ पे होना, ये एक बड़ी बात है, ये एक बहुत सिग्निफिकेंट बात है कि अमेरिका की ये कोशिशें कुछ बराबर साबित नहीं हो रही हैं। और ईरान में एक दुनिया के इतने सारे ममालिक, इतने वफूद और इतने ममालिक के सरबराहान आ रहे हैं और कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो इसमें कुछ पैगाम है के लिए कि वो ईरान को अलग थलग करने में नाकाम रहा है। तो ये इसकी एक बड़ी वजह है इसकी अहमियत की।
यह थे लंदन में मुकीम बर सगैर के मुमताज दानिशवर डॉक्टर इनायतुल्ला अंद्राबी। और चलते हैं इस्लामाबाद स्टूडियो। अब्बासी साहब, डॉक्टर इनायतुल्ला अंद्राबी की गुफ्तगु आपने मुलाहिजा फरमाई, तेहरान इजलास को इस नुक्ते निगाह से भी देखा जा रहा है कि अमरीका और सहूनी लॉबी ये प्रोपेगंडा करती रही है कि ईरान को बकौल उनके उन्होंने अलग थलग कर दिया है, लेकिन तेहरान इजलास में नावाबस्ता तहरीक के रुकन 120 मुल्कों के आला सतही वफूद ने शिरकत की, 17 मुबस्सिर मुल्कों के नुमाइंदों ने शिरकत की और 10 बैन अल-अक़वामी तंजीमों के सरबराहान और उनके नुमाइंदे शरीक थे। और तेहरान इजलास की एक नुमाया खसूसियत यह भी है कि अब तक जितने भी नावाबस्ता तहरीक के सरबराही इजलास हुए हैं, उन तमाम इजलासों में सरबराहान ममलकत सुदूर और वज़राए आज़म की शिरकत के लिहाज से सबसे ज्यादा शिरकत सरबराहान ममलकत की तेहरान इजलास में रही है। और इसको अमरीका और सहूनी हुकूमत की नाकामी और तेहरान की बहुत बड़ी कामयाबी समझा जा रहा है कि तेहरान ने यह साबित कर दिया कि 2/3 से ज्यादा ममालिक आलमी बरादरी की ठोस अक्सरियत ईरान के साथ है। इस बारे में आपका तज्जिया क्या है?
देखें, मैं डॉक्टर इंद्राबी साहब से बड़े अदब से उनकी एक चीज़ से मैं डिफर करूंगा। सबसे पहली बात है कि ईरान आइसोलेशन में नहीं गया, ना हिस्ट्री में कभी था ना अब है। जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी का स्टूडेंट और इंटरनेशनल रिलेशंस का स्टूडेंट जानता है कि किसी पर पाबंदियां लगाकर उसको तन्हा नहीं किया जा सकता। हाँ, ये देखा जाता है कि किसी के घर कितने लोग आ जा रहे हैं, उसका अगर सोशल बाइकआउट हो गया है तो उसे आइसोलेटेड कहते हैं। ईरान का तो सोशल बाइकआउट है ही नहीं। ईरान के पड़ोस में पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इराक है, टर्की है, फिर इसके अलावा चाइना है, इंडिया है, ये सारे ममालिक शुमाली अफ्रीका के ममालिक हैं, मशरक वस्ता के। कोई तेल ईरान से खरीद रहा है, चीज़ें आ जा रही हैं, ईरान के सफारतकार उन मुल्कों में मौजूद हैं, उनके ईरान में मौजूद हैं। तो आइसोलेशन तो मुझे डिप्लोमेटिकली आइसोलेट नहीं है, तो फिर किस बात पर आइसोलेट है? डिप्लोमेटिकली आइसोलेशन नहीं है ईरान की, इकोनॉमिकली भी ईरान आइसोलेट नहीं है, यूनिटी के हवाले से भी आइसोलेट नहीं है। मैं समझता हूँ ईरान तो इस वक्त दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है दुनिया की हिमायत हासिल करने में, और वो मैं जज्बाती अंदाज में नहीं कह रहा, ये मेरे सामने पेपर पड़ा हुआ है BBC का, और इसमें विकिपीडिया इंसाइक्लोपीडिया ने जो आज दिया है स्टेटमेंट 16 नेम कॉन्फ्रेंस का, 150 ममालिक के मंदोबीन ने नेम कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है। अब बताइए, 157 ममालिक हैं दुनिया के नक्शे पर, 150 ममालिक के नुमाइंदे शरीक हुए, क्या ये आइसोलेशन है या ईरान के साथ एक यूनिटी और ब्रदरहुड और इजहार यकजहती का एक अंदाज है? फिर देखें, 27 ममालिक के सुदूर सरबराहान ममलिकत, 2 बादशाह और इसी तरह 7 प्राइम मिनिस्टर, 9 वाइस प्रेसिडेंट्स और 2 पार्लियामेंट के स्पोक्समैन और 5 स्पेशल उनके इनवॉयज यानी पूरे वफूद शिरकत किया उन्होंने। और यह समिट इसमें OIC और दीगर जो तंजीमें हैं ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप की, नॉन ऑर्गेनाइजेशनल, UNO के वहां पे मुबसरीन, तो पूरी दुनिया में बगैर किसी रंगो नस्ल के, बगैर किसी अकीदे और फिरके के, हर शख्स ईरान की समिट में शरीक है। तो ये मेरे ख्याल में दुनिया की यूनिटी का और पीस और को एग्जिस्टेंस का मैं तारीख का सबसे बड़ा डिक्लेरेशन करार दे रहा हूं, और इसने सारी आइसोलेशन को तोड़ के उसके बुतों को पाश पाश करके रख दिया है। और अमेरिका को, इसराइल को और उसके अलाइज को बता दिया है कि तुम आइसोलेशन की बात करते हो। दुनिया के 120 ममालिक जो नावाबस्ता तहरीक के मेंबर हैं, 157 में से 120 ममालिक निकालें तो 76.25% बनता है, यानी दुनिया के 76.25% ममालिक वो इस तहरीक में शामिल। दुनिया के 95% कंट्रीज के मुबसर इस तहरीक के इजलास में शरीक। दुनिया के 25 जो है प्रेसिडेंट इस तहरीक के अंदर शामिल, और प्राइम मिनिस्टर्स और दूसरे लोग शामिल हैं। तो आइसोलेशन तो बिल्कुल ब्रेक हो गया है, ये आइसोलेशन नहीं है, ये ज्वाइंट डिक्लेरेशन है पीस का, को एग्जिस्टेंस का। और ईरान ने साबित कर दिया है कि उनके अंदर लीडिंग रोल प्ले करने की सलाहियत मौजूद है। वो दलील से बात करते हैं, वो आर्ग्यूमेंट से बात करते हैं, वो डायलॉग की बात करते हैं। और महमूद अहमदी नजाद हूं या आयतुल्ला अली खामेनेई, वो दलील और कलम का सहारा लेकर दुनिया के सामने कलम की ताकत के जरिए अपना मौकफ रखने की सलाहियत रखते हैं। और मेरे ख्याल में ईरान की बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने अमरीका के बारूद को, अमरीका के हथियारों को, उसके असलहे को और इसराइल की बदमाशी को अपने डायलॉग की ताकत से नेस्तो नाबूद करके रख दिया है। और दुनिया के सामने जुबान की जंग जीत चुके हैं, मुजाकरात की जंग जीत चुके हैं, और बता दिया है कि हमारे अंदर इल्म की ताकत है, हमारे अंदर मुसावात की ताकत है, अमन की ताकत है। और उन्होंने जिस तरह इस्लाम का नक्शा पेश किया है और अमन की बात की है, उससे हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिल भी जीते हैं, उससे जो माइनॉरिटीज हैं दूसरे ममालिक की उनके दिल भी जीते हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा डेक्लरेशन है पीस का। तो ये 2012 की समिट को मैं पीस का इंटरनेशनल डेक्लरेशन कहता हूं कि अमन का इससे बड़ा डेक्लरेशन अमेरिका अपना बारूद बेचकर भी नहीं दे सका, अमेरिका अपना असलहा बेचकर भी नहीं दे सका जो ईरान ने दिया है। अब बात सिर्फ इतनी है कि अमेरिका चाहता था कि ईरान आइसोलेट हो, पाकिस्तान में जो हजारा कम्युनिटी है और दीगर अहले बैत के मानने वाले लोगों को कत्ल करके ईरान और पाकिस्तान के दरमियान एक रिफ्ट डाला जाए, रखना डाला जाए। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान रिफ्ट डालने की कोशिशों में अमेरिका नाकाम हुआ, प्रेसिडेंट जरदारी वहां पे गए, हमारी वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी घर गईं, और आज पूरे पाकिस्तान के अंदर इस कॉन्फ्रेंस पर चाहे सुन्नी है, शिया है, किसी भी स्कूल ऑफ थॉट का शख्स है, वो ईरान की लीडरशिप को दिल से एक्सेप्ट कर चुका है और उसे सैल्यूट करता है कि जिसने सब रंग व नस्ल के लोगों को इकट्ठा करके इंसानियत की बात की है। तो ह्यूमैनिटेरियन कॉज के हवाले से भी नावाबस्ता तहरीक बहुत अहमियत की हामिल है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि इस वक्त हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, अफ्रीका हो या लीबिया, हर जगह पे अमेरिका ने अपनी थानेदारी डाली हुई है। वो असलहा बेचकर लोगों को कत्ल कर रहा है और बाज़ जगहों पे अपने पपेट्स बिठा के वहां आम आवाम के अंदर सेक्टेरियन वायलेंस, फिरकावारियत को प्रोमोट कर रहा है। खुदारा ब्रदरहुड की बात की जाए और पाकिस्तानी लीडरशिप को भी सोचना चाहिए, यहां की गवर्नमेंट को भी, कि वो दहशतगर्द और वो तालिबान और वो लश्कर जंगवी के जो असलहा बरदार लोग हैं उन्हें एक्सपोज करके अदालतों में ट्रायल किया जाए, उन्हें फांसियों पर लगाया जाए और पूरी जो पाकिस्तानी मैसेज है उसे ब्रदरहुड का मैसेज दिया जाए, जो ईता के आइंदा आने वाले अरसे में ईरान के बाद पाकिस्तान भी इस काबिल बन सके कि वो नैम का जो है वो उसकी चेयर हासिल करे और लीडिंग रोल प्ले कर सके।
बहुत बहुत शुक्रिया अंसारी साहब, आप लाइन पर हैं जनाब? जी अंसारी साहब, जी अंसारी साहब, जी। और नाज़रीन, यहाँ नावाबस्ता तहरीक के बारे में बड़े सगीर के मुमताज दानिश्वर डॉक्टर कैसर इमाम साहब क्या कहते हैं, मुलाहिज़ा फरमाएं।
नैम की 16वीं कॉन्फ्रेंस जो तेहरान में हो रही है, अगरचे इसका अहम तरीन मौजू इक्तसाद और तजारत है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इक्तसादियात और तजारत का गहरा ताल्लुक सियासत से भी है और मुल्क की तमाम मुल्कों की इकॉनमी से भी उसका गहरा ताल्लुक है। इस कॉन्फ्रेंस में जहाँ 120 ममालिक के नुमाइंदे शरीक हैं और इनमें बादशाह भी हैं, इनमें सदर भी हैं, वज़राए आज़म भी हैं और दूसरे मंदूबीन भी हैं, मैं समझता हूं कि इनको एक ऐसा मौका मिल रहा है जहां वो न सिर्फ अपनी बाहमी इक्तसाद व तजारत के बारे में बात कर सकेंगे बल्कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होना चाहिए उसके बारे में भी वो अपना तबादला ख्यालात कर सकेंगे और एक दूसरे से मालूमात हासिल कर सकेंगे और दूसरों को मालूमात दे सकेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में जैसा कि आप सब पहले से जानते होंगे, शाम का मामला सीरिया का नहायत अहम मामला है जिस पर बातचीत होगी। उसके अलावा फलस्तीन के मौजू पर बातचीत होगी जो नहायत अहम मामला है तमाम मुसलमानों के लिए भी और तमाम दुनिया के लिए भी, जहां आपको पता है कि कई सालों से बेशुमार फलस्तीनियों को बेघर किया गया है और उसकी वजह से जो मसाइल रोज बरोज पैदा हो रहे हैं उनके बैन अल-अक़वामी सतह पर कई तरह के नतायज जो हैं वो सामने आ रहे हैं। इसके अलावा इस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जायज़ा लिया जा रहा है और ये एक बिल्कुल तयशुदा बात, जब 120 मुल्क उसमें शामिल हो रहे हैं और अपने मुकम्मल भरपूर सतह पर उनकी शमूलियत हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक तरह से अक़वाम मुत्तहिदा के पैरेलल एक बॉडी जो है वो खुलकर सामने आ रही है। अक़वाम मुत्तहिदा में चूंकि इजारादारी जो है बाज़ मुल्कों की वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए बहुत से दूसरे ममालिक जो ये समझते हैं कि उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, उनको ये एक मौका मिल रहा है, ऐसा फोरम मिल रहा है जहां वो अपनी बात खुलकर कर सकेंगे। और मैं समझता हूं कि अगर कल कलां को सलामती काउंसिल का मतबादल ही ये इदारा बन गया नैम का, तो मैं समझता हूं ये कोई अचंभे की बात नहीं होगी। इसके अलावा इस कॉन्फ्रेंस की एक जो बहुत अहम बात है वो ये है कि मिस्र के नए सदर जो हैं वो इसमें शामिल हुए हैं और ये बात जो है ये तमाम मुल्कों के लिए बहुत ही खुशाइंद है, ख़ास तौर पर ईरान के लिए इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है और ईरान में मिस्र का सफारतखाना भी अब दोबारा खुल रहा है। जाहिर है कि मिस्र के साथ ईरान के जो ताल्लुकात हैं वो अगर आगे बढ़ेंगे तो इससे दूसरे तमाम ममालिक को भी, इस इलाके के ममालिक को भी बहुत से फ़ायदे हासिल होंगे। सो मैं समझता हूँ कि इस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ भी होगा वो सारे मुल्कों की बाहमी तरक्की के लिए, उनके बाहमी ताल्लुकात के लिए एक नहायत ही खुश आइंद किस्म की बात है। और दूसरी सबसे अहम बात जो है वो ये है कि इस एरिए में ईरान को एक ख़ास अहमियत हासिल हो रही है सियासी सतह पर, बैन अल-अक़वामी सतह पर और ख़ास तौर पर इस सतह पर कि दूसरे ममालिक जो ये पसंद नहीं करते थे कि ईरान के साथ दूसरे मुल्कों के ताल्लुकात हों, उनको भी थोड़ी मुंह की खानी पड़ रही है। जी
ये थे डॉक्टर कैसर इमाम जो लंदन में मुकीम हैं, इनकी गुफ्तगू हमारे साथियों ने इजलास से पहले रिकॉर्ड की थी। और नाज़रीन हम ये बता दें कि जैसा कि कैसर इमाम साहब ने तवक्को जाहिर की थी, उनकी तवक्को के मुताबिक तेहरान इजलास में मसले फलस्तीन पर खास तवज्जो दी गई है। शाम के बारे में साफ और वाज़े लफ्ज़ों में ये तय किया गया है कि शाम में बैरूनी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए और शाम का मसला मुखालिफीन और हुकूमत के दरमियान डायलाग के जरिए हल होना चाहिए और शाम में किस किस्म की इस्लाहात आनी चाहिए, कैसी हुकूमत होनी चाहिए, इसका फैसला करने का हक सिर्फ शाम के अवाम को है। और फलस्तीन के बारे में भी ये तय किया गया है कि सरजमीन फलस्तीन जब तक आज़ाद नहीं होती है, मुहाजिर फलस्तीनियों को वतन वापसी का हक नहीं दिया जाता है और यहाँ से गासिबाना कब्जा खत्म नहीं होता है, उस वक्त तक हकीकी मानों में मशरक़ वस्ता में अमन कायम नहीं हो सकता। और इसके लिए कायदे इनकलाब इस्लामी ने जो तजवीज़ पेश की है कि मसले फलस्तीन का मुनसिफाना वाहिद हल ये है कि तमाम फलस्तीनियों को यह हक दिया जाए, चाहे वो इस वक्त सरजमीन फलस्तीन में मौजूद हों या वो फलस्तीनी जिन्हें यहां से निकाल दिया गया है, वो असली बाशिंदे चाहे वो ईसाई हो, मुसलमान हो या यहूदी हो, कि वो रेफरेंडम में शिरकत करें और सियासी निज़ाम के बारे में वो फैसला करें, सिर्फ यही इसका एक मुनसिफाना हल है। तो चलते हैं इस्लामाबाद स्टूडियो, उमर रियाज अब्बासी साहब, फलस्तीन के बारे में और शाम के बारे में इस इजलास में खास तवज्जो दी गई। शाम के बारे में साफ और वाज़े लफ्ज़ों ने तमाम अराकीन ने मुत्तफ़िका तौर पर बैरूनी मुदाखलत की मुखालफत की है और फलस्तीन के बारे में भी सभी मुल्कों की राय यह रही है कि इसका मुनसिफाना हल सिर्फ यह है कि गासिबों को यहां से निकाला जाए और सरजमीन फलस्तीन के असली मालिकीन को यह सरजमीन वापस की जाए। और इसके लिए जो ईरान की तजवीज थी, जो कायदे इंकलाब इस्लामी ने इससे पहले भी पेश की थी और अपनी इफ्तिताही तकरीर में उसका इयादा किया है, उसकी तायीद की गई है, इस बारे में आपकी राय क्या है?
देखिए, जब हम जो इसके जब बनी थी नावाबस्ता तहरीक, इसका जो बुनियादी ढांचा था, जब डॉक्ट्राइन जिसे हम कहते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स जो इसके लिखे हुए हैं, उसमें जो पहला प्रिंसिपल लिखा हुआ है म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटरी इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी और म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, यानी एक दूसरे की हदबंदी का, रियासत का एहतराम और एक दूसरे पर जारहियत न करना, ये तो इसके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, अब जो बेसिक प्रिंसिपल्स इसके हैं, जो बुनियादी अनासर हैं जिस पे नावाबस्ता तहरीक का ढांचा खड़ा है, इन पे बात की गई है और सबसे ज़्यादा ईरान ने इस पे जोर दिया है कि फ़लस्तीनियों को हक़ खुद इरादियत देना चाहिए। हुज्जतुल्लाह आयतुल्लाह अली खामेनेई ने भी इस अपने एड्रेस में इस चीज़ को जो है उस पर जोर दिया है। बात सिर्फ इतनी है कि आज तक OIC अरब लीग, जो मुर्दा घोड़े हो चुके हैं, वो इतना इन्फ्लुएंस होने के बावजूद भी फ़लस्तीन पे उतने ज़ोर से बात नहीं कर सके डिप्लोमेटिकली, जितनी शद्दो मत से बात ईरान ने नावाबस्ता तहरीक के मौका पर फ़लस्तीनियों के हुकूक़ के लिए की है। तो मेरे ख्याल में पूरी अरब की लीडरशिप एक तरफ और अकेला ईरान एक तरफ, जिसने ईरान फ़लस्तीनियों की इंसानी हुकूक की, आज़ादी की और वहाँ पर इसराइली जारियत की, इन सब इशूज़ पर जो है वो ईरान ने बात की है, तो ये इस हवाले से भी बहुत बड़ी कामयाबी है। जहाँ तक बात है सीरिया की, सीरिया पे देखे जितने नावाबस्ता तहरीक के ममालिक हैं, मैंने कल स्टडी किया 120, आप हैरान होंगे कि 120 में से 116 ममालिक शाम में बैरूनी जारियत के मुखालिफ हैं। जो 4 ममालिक हैं उनका मौकफ वाजे नहीं है या उन्होंने सकूत या खामोशी इख्तियार की है, यानी दुनिया के 157 में से 116 ममालिक ये कह रही हैं कि दुनिया और शाम के अंदर हम बैरूनी जारियत, फॉरन एग्रेशन और इन्वेजन की मजम्मत करते हैं। और मैं हैरान कुन तौर पे आपको बताता हूं कि अक्वामे मुत्तहिदा, जो अमेरिका और इसराइल की लौंडी है, जो उसकी जो है वो जर खरीद गुलाम बन चुकी है वो ताकतें, और वो उसके डिक्लेरेशन में मौजूद है कि किसी भी मुल्क के अंदर फॉरेन इन्वेजन और एग्रेशन जो है वो बेसिक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होगी, वो अक्वामे मुत्तहिदा के बेसिक वॉर के जो जंग के प्रिंसिपल्स हैं उनकी खिलाफ वर्जी होगी। वो तो खुद इसकी खिलाफ वर्जी करवा रहे हैं, लेकिन ईरान ने शाम के अंदर जो बैरूनी मुदाखलत है उसको रुकवाने के लिए मेरे ख्याल में एक जॉइंट रेजोल्यूशन पास करवा ली है। अब दुनिया को यह देखना है कि 120 ममालिक एक पलड़े में रखे जाएं और बाकी 47 ममालिक एक पलड़े में रखे जाएं, तो देखें कि मेजॉरिटी 120 की है या 47 की है। क्या सिर्फ ताकत असलहे के जोर पे अक्सरियत का नाम है? क्या अक्सरियत जो है पूरी दुनिया में लोगों की लाशें गिराने का नाम है? क्या अक्सरियत पूरी दुनिया में थानेदारी चमका के अपनी जो है वो आज़ादी और अपनी जो है वो बका का नाम है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये छोटी ताकतें, ये गरीब ममालिक ही सही, ये इंसाफ पसंद ममालिक ही सही, 120 ये अब वक्त पर खड़े हो गए हैं और मेरे ख्याल में इन्होंने वक्त की नज़ाकत को समझ लिया है। अगर ये इन इश्यूज़ को एड्रेस कर रहे हैं और इस पर अमल करवा लिया इन्होंने नावाबस्ता तहरीक ने ईरान की लीडरशिप में, तो मेरे ख्याल में अमरीका की जो इक्तदार है, उसकी डिक्टेटरशिप है, उसका सूरज गुरूब होने को और आले सऊद की मनमानियां और उसका आला कार जो अमेरिका का बना हुआ है उसका भी सूरज गुरूब होने को है। तो मेरे ख्याल में हरमैन शरीफैन में भी तब्दीली वाकई होने वाली है इस कॉन्फ्रेंस के, इंशाल्लाह अच्छे पॉजिटिव नतायज आए तो। जिस दिन हरमैन शरीफैन में तब्दीली आ गई पूरे आलम इस्लाम और दुनिया में तब्दीली आएगी।
शुक्रिया।
जिस दिन अमरीका का सूरज गुरूब हो गया दुनिया।
जी बहुत बहुत शुक्रिया। और नाजरीन देखते हैं कि नावाबस्ता तहरीक के अहदाफ और मकासिद के बारे में बरे सगीर के एक मुमताज दानिश्वर मखसूस सिद्दीकी जो लंदन में मुकीम है क्या कहते हैं, मुलाहिज़ा फरमाएं।
पहला मैं ये इसके बारे में ये कहूँगा कि जो नावाबस्ता तहरीक शुरू हुई वो 1955 में इंडोनेशिया में उसकी शुरुआत हुई थी, और उसमें ये था कि ये जो ममालिक ये समझते थे कि जिनको अमरीकी या रूसी असर उनके ऊपर नहीं है वो मिलजुल के कुछ ऐसी तहरीक शुरू करें कि जिसमें उन मुल्कों की के बारे में उनकी बेहतरी के लिए काम हो सके जिनको जो इनके बड़ी जो पावर ब्लॉक्स हैं इससे अलहदा रहना चाहते हैं। और इस सिलसिले में इंडोनेशिया के सदर सुहार्टो और हिंदुस्तान के वजीर आजम नेहरू जो थे और उसके साथ साथ और तकरीबन 25 ممالک کے سربراہوں نے شرکت کی تھی, تو اس میں اس کا جو تھا ایک بیسک ایک ماڈل بنا تھا جس کو 1961 میں بیلگریڈ میں میں خاص طور پہ جو ان کے جو مارشل ٹیٹو جو اس کے جو یوگوسلاویا کے صدر تھے وہ ہندوستان کے وزیر اعظم نہرو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جمال عبد الناصر جو کہ صدر تھے مصر کے, انہوں نے خاص طور پہ آگے بڑھ کے کافی اس میں حصہ لیا, اس کے ساتھ ساتھ اور تمام ملکوں نے اس میں شرکت کی. لیکن جو سب سے ضروری چیز اس میں اس وقت جو سامنے آئی تھی وہ یہ تھی کہ کولڈ وار اب پوری شدت سے تھی اور وہ یہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا بھی ایسی کوئی تنظیم بنے کہ جو کولڈ وار کو نیوٹرلائز کر سکے یا اس سے الگ رہے, کیونکہ کولڈ وار میں یہ تھا کہ امریکہ اور سوویت یونین آپس میں ظاہر ایک دوسرے کے خلاف تھے اور بجائے اس کے کہ ہاٹ وار یعنی کہ باقاعدہ اسلحے سے جنگ ہو وہ اس میں ایک طرح کی آپس میں جنگ تھی لیکن اس میں کوئی اسلحہ یا کوئی مادہ نہیں ہو رہی تھی. تو سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں کہ جس مقصد کے لیے یہ قائم کیا گیا تھا نان الائن موومنٹ, اس کا یہ تھا کہ کولڈ وار کو کسی طرح سے نیوٹرلائز کیا جائے اور پھر ان ممالک کو کہ جن کو جو خاص طور پہ اپنے پچھلے سالوں میں صدیوں میں انگریزی برطانوی یا امریکی یا جرمنی یا فرانسیسی یا اٹلی کے ایک طرح سے کالونیلسٹ رول میں رہ چکے تھے, ان کو ان کی کوئی ایک زبان ہو تاکہ وہ آپس میں مل بیٹھ کے اپنی ترقی کے لیے وہ کام کر سکیں. اور اس میں جو سب سے چیز ضروری یہ تھی کہ وہ ممالک اس میں شرکت کرنا چاہتے تھے کہ جس میں جن کا کسی ان کی بڑی سپر پاور سے کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں تھا. یہ بڑا ضروری تھا کہ یہ جو ہے کسی قسم کی ملٹری الائنس وہاں پہ نہ ہو یا کسی ان بڑے ملک کے سوویت یونین جو تھا اس زمانے میں جو کہلاتا تھا اس کے اڈے نہ ہو فوجی اڈے یا امریکہ کے فوجی اڈے نہ ہو یا برطانیہ کے فوجی اڈے وہاں پہ نہ ہو اور ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی الائنس نہ ہو. یہی وجہ ہے اس کی کہ جب حالانکہ پاکستان نے 1955 میں اس پہ انڈونیشیا میں شرکت کی تھی لیکن اس کے بعد پاکستان کو 1961 میں بلگریڈ میں اس میں شامل ہونے سے منع کر دیا گیا تھا, جس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان اتفاق سے وہ سیٹو سینٹر جو دو آرگنائزیشن تھیں اس کا وہ ممبر تھا, جس وجہ سے اس کو یہ سمجھا گیا کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے بہت زیادہ قریب ہے اور بلکہ امریکہ کے ایک طرح کا اس کو ملٹری پیکٹ اور ملٹری الائنس ہے. اب حالانکہ اس کے بعد سے اب تبدیلی آ چکی ہے, اب پاکستان اب اس کا ممبر ہے اور پاکستان اس میں کھل کے حصہ لے رہا ہے. اس موومنٹ کی جو ضروری چیزیں جو کوشش کی تھی اس کے ممبران نے کرنے کی وہ یہ تھی کہ یہ جو کالونیلزم اور نیو کالونیلزم کا جو اثر ہے یا جو جس طرح سے بڑی طاقتیں غریب ممالک کو دبا کے اور ان سے حالانکہ ایک طرح سے ان پہ قابض نہیں ہیں لیکن ان کو اسی طرح سے کا سلوک کر رہی ہیں کہ جیسے کہ ان پہ حکومت کر رہی ہوں, ان سب چیزوں کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے. اور دوسرا یہ تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں تاکہ ہر طرح کی ترقی یعنی معاشی اور بھی ہر جگہ ان کی آپس میں ترقی ہو سکے. تو جو ممالک اس کے ممبر بنے تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ ایک دوسرے کی مدد کریں تاکہ آپس میں ایک دوسرے کا فائدہ ہو سکے. اور خاص طور پہ یہ جو جیسا میں نے کہا کہ یہ کالونیلزم اور نیو کالونیلزم وغیرہ کا جو سلسلہ جو جاری تھا اس کو بھی اس میں کمی لانے کے لیے. اس میں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حالانکہ 1961 سے یہ چل رہا ہے لیکن ابھی تک اور اس کی یہ 16th کانفرنس جو ہے اس وقت تہران میں منعقد ہو رہی ہے, لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ مغربی ممالک میں اس میں اس کے اوپر کوئی یعنی اتنی بڑی آرگنائزیشن بن گئی ہے, 120 ملک اس کے ممبر ہیں لیکن اس کو اس پہ انہوں نے اس کو کوئی سنجیدگی سے مغرب کے جو ممالک ہیں یورپین یونین ہے یا امریکہ ہے اس کو کوئی سنجیدگی سے اس پہ کوئی کی طرف دیکھا نہیں نہ اس کا کوئی خاص اثر لیا ہے. حد تو یہ ہے کہ میں یہاں انگلستان میں رہتا ہوں برطانیہ میں, یہاں کے اخباروں میں کبھی بھی شاید کوئی ایسا کبھی ذکر آئے چھوٹا موٹا کہ یہ کانفرنس اتنی بڑی ہو رہی ہے, तेहरान में जैसे हो रही थी उससे पहले शर्म और शेख में 3 साल पहले हुई थी, तो कि कोई ऐसी जिसमें कितने ममालिक के सदर और वजीर आजम और फॉरेन मिनिस्टर ने शिरकत की, बिल्कुल यानी जो न्यूज़पेपर्स में अखबारात में या टेलीविजन पे या रेडियो चैनल्स में इसका कोई कवरेज तकरीबन ना होने के बराबर है।
ये थे डॉक्टर मकसूद सिद्दीकी, जिनसे गुफ्तगु तेहरान इजलास के मौके पर रिकॉर्ड की गई थी। बहरहाल मगरबी मीडिया ने अगरचे इस इजलास को नजरअंदाज किया, लेकिन उन्होंने खुद अपना मजाक उड़ाया है, इसलिए कि सारी दुनिया ने एतराज किया है कि तेहरान इजलास इंतहाई कामयाब रहा है। इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहते हैं, खुदा हाफिज़।